तो आज के इस 13 सितंबर 2016 के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आज बहुत आपका भाग्य है कि आज बहुत पवित्र दिन है। कौन सा दिन है पवित्र? यस, आज एकादशी है। एकादशी यानी भगवान को समझने का एक ज़्यादा मौका। ये पवित्र दिन पर भगवान के लिए हम व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, थोड़ा शरीर को ज़रा विश्राम देते हैं और जो समय बचता है उसमें ज़्यादा भगवान के नाम का जप करते हैं, व्रत करते हैं, उनका अधिक ध्यान करते हैं। एकादशी का दिन हमारे जो दश इंद्रिय है ना, दश इंद्रिय, उनको भगवान की दिशा में रखने का एक अच्छा मौका है, इसलिए एकादशी नाम है उसका। दश इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए और उनको भगवान की सेवा में मोड़ने के लिए एकादशी का व्रत दिया गया है। साल में 26 एकादशी आती है और इन 26 एकादशियों के बाद में क्या आता है, द्वादशी आती है ना, 12th डे आता है। ये द्वादशी में से चार महाद्वादशी है, उसमें से एक महाद्वादशी कल आने वाली है। साल में 26 एकादशी के बाद में द्वादशी आती है, हर एक एकादशी के बाद में, लेकिन इन सभी द्वादशी के एक चार जो महाद्वादशियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उसमें से जो कल द्वादशी है उसका नाम है वामन महाद्वादशी। आपने वामन का नाम सुना है, भगवान वामन का नाम सुना है? केरला में सुना होगा कि नहीं, महाबली और वामन नहीं सुना है? केरला में महाबली बहुत फेमस है ना, ओणम भी इसी कनेक्टेड है इसके लिए। तो महावामन द्वादशी का क्या कथा क्या है? तो ऐसा है कि भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था सुतपा और पृश्नी। सुतपा प्रजापति थे, ब्रह्मा के अध्यक्षता में वो सृष्टि का निर्माण करते थे, बड़े महान व्यक्ति थे वो। उन्होंने 12,000 साल तपस्या किया मोबाइल ना देखते हुए। समझ में आया आपको? हाँ, 12,000 साल तप किया उन्होंने और उसके बाद में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले मैं आप पर वो प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहते हो? तो सुतपा और पृश्नी पति पत्नी ने मांगा कि आप जैसा पुत्र होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं है, एको हम द्विजो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा मैं ही हूं और कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में आता हूं। तो भगवान विष्णु उनके गर्भ में पृश्नी गर्भ के नाम से जन्म लिया, उन्होंने पहला जन्म लिया। अगले जन्म में सुतपा और पृश्नी जो थे वो अदिति और कश्यप मुनि के रूप में जन्म लिया, उन्होंने जन्म लिया। तो अगले जन्म में सुतपा नाम के जो प्रभु थे वो बने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति इसके रूप में बनी, माता पृश्नी माता जो है ना वो अदिति बनी। अभी अदिति कौन थी? अदिति सभी देवताओं की पत्नी माता थी। वो तीन पत्नियां थी कश्यप मुनि की, एक थी अदिति जिनके द्वारा सारे देवताओं का जन्म हुआ, दूसरी थी दीति जिनके द्वारा सारे दानवों का दैत्यों का जन्म हुआ, दीति दैत्य, और थर्ड थी दानु जिसके द्वारा सारे दानवों का जन्म हुआ। और उनकी ऐसी कई पत्नियां थी, एक पत्नी से सारे सांप वंश का जन्म हुआ, एक पत्नी थी कद्रु, कद्रु का जन्म, कद्रु के द्वारा सारे सांपों का जन्म हुआ, एक थी विनीता जिसके द्वारा गरुड़ का जन्म हुआ। ऐसी जितनी भी योनियां हैं एक एक पत्नी के द्वारा अलग अलग योनियां बनी। तो जो अदिति देवताओं की पत्नी थी उनका और दानवों का और दैत्यों का हमेशा झगड़ा होता था, तो दैत्यराज के रूप में बलि का जन्म हुआ, महाबली। और महाबली ने इतना तपस्या किया और इतना युद्ध कौशल था उसके अंदर, तो एक बार इंद्र भगवान ने एक संत का अपराध किया, तो उसके वजह से इंद्र का सारा राज्य जो है वो चला गया, वो राज्यहीन हो गया, मतलब राज्य नष्ट हो गया, राजा का रंक बन गया वो। सब देवता लोगों को भगा दिया उसने, महाबली ने, अपने पराक्रम से। और भगाने के बाद क्या हुआ, कोई गुफा में छुप गया, कोई कहीं छुप गया, कोई पानी में छुप गया, इतना बल था उसके अंदर महाबली। तो आदित्य जो थी वो बहुत रोते रोते भगवान के पास आई, बोले महाराज मेरे पुत्र देखो सब लोग छुपे हुए हैं डर के मारे, पैसा नहीं, राज्य नहीं, अधिकार नहीं, कुछ नहीं, एकदम बलहीन, राज्यहीन, श्रीहीन सब हो गए, कुछ करो आप। तो भगवान ने कहा तथास्तु मैं आऊँगा। तो इन दोनों के पुत्र के रूप में आए वो, क्या नाम था उनका, वामन देव, मतलब बटू यानी छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और थर्ड लाइफ में यही दोनों क्या बनकर आए, वसुदेव और देवकी बनकर आए, और तब वही भगवान उनके रूप पुत्र के रूप में आए कृष्ण बन के। ऐसे तीन जन्म लिए उन्होंने। और ये सब कौन बता रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने जब ही वसुदेव और देवकी के गर्भ में जन्म लिया तो इनको याद दिलाया कि पहले जन्म में आप सुतपा और प्रश्नी थे, उसके बाद वाले में आप अदिति और कश्यप मुनि थे, और अभी आप वही वसुदेव और देवकी बनकर आए हो। पहले बार मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया, अगली बार मैं वामन देव के रूप में आया, और अभी मैं वही कृष्ण के रूप में आया हूँ। चिंता मत करना, आपके संकट का हरण करूँगा मैं, ऐसे भगवान ने उनको वरदान दिया। जानबूझ के भगवान चार भुजा में आए ताकि देवकी को और वसुदेव को डरने लगे कि मैं सामान्य बालक नहीं हूँ, भगवान हूँ, इसके रूप में दिखाने के लिए उन्होंने चार भुजा में आए। फिर भगवान ने दो रूप का बालक का रूप धारण किया, जिसको उठा के फिर वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल चले गए, है ना, पता है ना आपको कि नहीं पता है। हाँ, तो आज हमारी कथा जो है नंबर दो की कथा है, जब वामन देव के रूप में आए महाबली का संहार करने के लिए। अब ये महाबली कौन थे, आपने प्रहलाद का नाम सुना है, प्रहलाद भक्त प्रहलाद सुना होगा ना, हिरण्यकशिपु का बेटा था वो, हिरण्यकशिपु और उसकी पत्नी का बेटा, राक्षस कुल में जन्म होता उसका। तो प्रहलाद ने जब ही भगवान का भजन किया तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार डाला, है ना, भगवान ने, इतना दुख हुआ भगवान को कि मेरे भक्त को उसके पिताजी राक्षस ने इतना कष्ट दिया, तो भगवान बहुत गुस्से में आए और खंभा तोड़कर प्रकट हो गए और प्रहलाद भक्त के पिताजी को मार डाला। तब भगवान ने कहा प्रहलाद मुझसे वरदान मांगो, आपने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है, केवल मेरे भक्ति के लिए आपने इतना आतंक सहन किया है, अभी मैं आपको दर्शन तो दिया है वरदान भी देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहते हो। तो प्रहलाद कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे भगवान हो, आपका भजन ही मेरे लिए वरदान है। नहीं 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 आपको मांगना चाहिए, बताओ। तो भगवान ने कहा, तो प्रहलाद ने कहा अच्छा आपको देना ही है कुछ, तो एक काम कीजिए आप, ये मेरे पिताजी है ना, इन्होंने बहुत पाप किया है, अब ये पाप के हिसाब से उनको बहुत समय तक नरक में यातना भोगनी पड़ेगी, तो इनको आप माफ़ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा क्या बात करते हो, अरे वो तुम्हारे पिता है, तुम प्रहलाद हो, मेरे भक्त हो, वो तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पिता, केवल तुम्हारे पिता होने की वजह से वो पाप से मुक्त हो गए पहले से ही, क्योंकि आपके पिताजी हो। अरे केवल आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पिछले 10 पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे आगे के 10 पीढ़ी कितने हो गए, कितने हो गए, 21 हो गए ना कि नहीं, पिछले वाले 10, तुम्हारा 1 और तुम्हारे आगे वाला 10, 21 पीढ़ी में सभी लोगों का मैं उद्धार कर चुका हूँ, आप चिंता मत करना, सबका उद्धार हो जाएगा। तुम्हारी पीढ़ी में जो भी आएगा, जो तुम्हारा बालक बन के आएगा, तुम्हारे बालक का बालक बनेगा और धाम वंदना करेगा हाथ जोड़ के न सोते हुए, वो सबका मैं उद्धार करूँगा, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। तो ये प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, वो भी भक्त था भगवान का, लेकिन जो अगला पुत्र हुआ महाबली, वो भक्त था भगवान का लेकिन राक्षस भी था, प्रहलाद भी राक्षस ही थे, राक्षस कुल में जन्म हुआ था प्रहलाद का, दैत्य कुल में जन्म हुआ था उसका, मतलब परिवार बहुत गड़बड़ था उसका, लेकिन वो खुद भक्त बने। इसका मतलब क्या होता है, आपका परिवार जाति देश कैसा भी हो, आप भक्त बन सकते हो। अब बोले क्या करूँ, मैं तो एक कुल में जन्म हुआ है, मैं तो चमार हूँ, मैं तो कुंभार हूँ, मैं तो पैसा हूँ फलाना हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो कुंभार हूँ, मैं तो कुणबी हूँ, ऐसा बोल के फायदा नहीं है। मनुष्य हो ना आप लोग, मनुष्य है ना, मनुष्य की बुद्धि प्राप्त है ना आपको, तो आप भगवान के भक्त बन सकते हो। इतना प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी प्रहलाद जैसा बालक 5 साल की उम्र में इतना बड़ा भक्त बना कि भगवान को आना पड़ा उसके लिए, खंबा तोड़ के, बोलो कितना बड़ा भक्त होगा वो। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी इतना विपरीत, इतना गलत संग मिला उसको, इतने गलत लोग, राक्षस लोग, भगवान के द्वेष करने वाले, गुरु भी ऐसे ही, शंड अमर का दोनों ऐसे ही भगवान के द्वेषी। स्कूल में भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर भी वही संग है, फिर भी भगवान का भक्त ऐसा बना कि भगवान को भी उसको बचाने के लिए खंभा तोड़ के आना पड़ा। ऊपर से वरदान मिला राक्षस लोग को कि इनमें से किसी को मारूंगा ना मैं। तो महाबली ग्रैंड सन, हाँ पोता प्रहलाद का, ये उसका बैकग्राउंड है। तो ये महाबली वैसे बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन राक्षस भी था, देवताओं का शत्रु था वो। जैसे ही इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपराध किया ना, वैसे ही महाबली ने आक्रमण किया उसका लाभ लेते हुए। उसने ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया था, अपने गुरु शुक्राचार्य का बहुत सेवा किया था। अल्टीमेटली हमको एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में श्री गोपीकांत प्रभु जब तक हैं तब तक कथा चलती रहेगी, है ना। आगे बैठो। तो जब तक हमारा इस जीवन में संत का मुलाकात नहीं होता है तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। अगर हमको जीवन में गरीबी से ऊपर भी उठना है ना, तो एक फरिश्ते के कांटेक्ट होना जरूरी है। कोई बड़ा आदमी का कृपा हमारे हाथ सर पे होगा ना, तो हम लोग ऊपर आ सकते हैं, है कि नहीं। एक कोई गॉड फादर मिलना चाहिए हमको। तो मनुष्य के जीवन में संत का मुलाकात जब होता है ना, सेंटली पर्सनैलिटी, तब उसका उद्धार हो जाता है। तो संत बहुत जरूरी है। तो बलि महाराज का गुरु कौन था, शुक्राचार्य, ब्राह्मण थे वो, उसका उन्होंने बहुत सेवा किया था, बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो बलि महाराज ने उस बल के ऊपर, तेज था उनके ऊपर ब्राह्मण सेवा का। तो जब तक हम लोग, हमारे जीवन में कोई ना कोई संत का कांटेक्ट नहीं होता हमारा, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम रियली मनुष्य नहीं बनते। चल रहा है जीवन, ऐसा नहीं कि जीवन मनुष्य का नहीं है, चल रहा है, लेकिन रियल मनुष्य का जीवन प्रारंभ तब होता है जब किसी संत से हमारा कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट के बाद में उसकी सेवा प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। जब उनकी सेवा मिलती है संत की, तो हमारा जीवन एक्चुअली शुरू होता है और हमें बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है, जब एक संत से हमारी मुलाकात होती है। और एक संत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप कितना भी दुखी हो जीवन में, संत के कांटेक्ट में आओगे, सारा दुख नष्ट होगा और आनंद का अनुभव करेंगे आप। ये हमारा विश्वास है, हमने अनुभव किया है। आप कितने भी दुखी होंगे और एक संत का दर्शन करते हो आप, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आज हमारे हॉस्पिटल में एक संत एडमिट है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। तो आते बाहर निकलते, कभी सोनोग्राफी करने जा रहे हैं, कभी आईवी लगा रहे हैं उनको, कुछ टैपिंग चल रहा है, तो बीमारी के बहाने आते हैं, हम सबको दर्शन देते हैं। ऐसे संत हैं वो कि उनके एक मिनट के संग से भी आपका उद्धार हो सकता है। उनके शिष्य भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे नौकरी करने वाले हैं हमारे। तो ये भाग्य, हॉस्पिटल का भाग्य कैसा है कि ये हॉस्पिटल में अपने दरवाजे पे संत लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। हमको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, महाराज सेवा दो, महाराज सेवा दो, सेवा लेकर ही आते हैं यहाँ पर हमको देने के लिए। ले भाई, ये मुझे ज़रूरत है, मेरा ट्रीटमेंट करना है, मुझे सेवा करो, ऑपरेशन करना है, टेस्ट करना है, ये करना है, सोनोग्राफी करना है। उस बहाने अनायास ही, आप तो नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपको अनायास नौकरी के अंदर संत का दर्शन, संत की सेवा, संत की कृपा प्राप्त होती है। तो वैसे ही तेज प्राप्त करके वो आक्रमण किया उसने इंद्र के ऊपर, और सारे देवताओं को भगा दिया, उनका राज्य छीन लिया और मालिक बन गया वो। लेकिन एक बात रह गई, जैसे कि सब राज्य छीन लिया उनका, लेकिन इंद्र न इंद्र ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पोस्ट का नाम है। जैसे कि डायरेक्टर, ये किसी का नाम नहीं है, उसके पोजीशन का नाम है वो। जैसे आप हेड नर्स, मतलब कि आप हेड, आपका नाम हेड नर्स नहीं है, आप हेड नर्स की पोजीशन में हो। वैसे इंद्र एक पोजीशन है, तो उसको कहते हैं इंद्रपद। इंद्रपद का मतलब क्या है, सारे देवताओं का मान्य किया हुआ राजा। यस, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप राजा हो, जबरदस्ती बना हुआ राजा नहीं, किसी का छीन के बनाया हुआ नहीं। लोग बोलेंगे हाँ यस, दिल से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सब राजा तो छीन लिया उन्होंने, लेकिन देवताओं ने दिल से उनको राजा नहीं माना, जानते हैं कि हमारा छीन के बना हुआ है, ये हमारा शत्रु है। तो अभी उनको दिल से मानने के लिए क्या करना है, तो उसको बताया गया कि आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। 100 यज्ञ करेंगे आप तो उसके फल के स्वरूप सारे देवता लोग दिल से आपको इंद्र मानेंगे, उनका इंद्र बोल के एक्सेप्ट करेंगे आपको। अभी देखो, 7 स्वर्गलोक, 1 पृथ्वीलोक और 6 नरकलोक, कितने हो गए, कितने हो गए, सुन रहे हो कि सो रहे हो? 7 स्वर्गलोक, 1 पृथ्वीलोक और 6 नरकलोक, कितने हो गए, 14। ये 14 लोकों से मिलकर ब्रह्मांड बनता है, उसमें 7 ऊपर के स्वर्गलोक होते हैं, अलग अलग नाम है उसके। हाँ, भूरलोका, भूवरलोका, स्वर्गलोका, महरलोका, तपलोका, सिद्धलोका, ज्ञानलोका, ऐसे 7 स्वर्गलोक है। लास्ट में ब्रह्मलोक है, लास्ट टॉप मोस्ट, और बीच में पृथ्वीलोक है, फिर उसके बाद में अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल, ऐसे 6 नरकलोक है। ये सारा उसने नाप लिया, बोलो, सारा पकड़ लिया अपने हाथ में, सब जीत लिया उसने। अरे हम लोग तो यार इंडिया पाकिस्तान इतना सारा लैंड के लिए तो झगड़ा करते हैं, इतना सा पाकिस्तान है तो फाइट कर रहे हैं, कितने साल हो गए, 70 साल हो गए अभी तक फाइट कर रहे हैं, इतने से लैंड के लिए। बलि महाराज ने एक ही आक्रमण के अंदर 14 भुवन सब जीत लिए उसने, लेकिन फिर भी इंद्रपद प्राप्त नहीं हुआ। तो बलि महाराज के गुरु ने बताया अभी आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। कितना टाइम लगा होगा उसको, जब 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो आपको इंद्र नाम का इंद्रपद मिलेगा, आपको आपका अभिषेक होगा, देवताओं के राजा के रूप में यज्ञ होगा, आपका अभिषेक होगा। और ठीक है, बनना है मुझे, चलो सब लोग मिलो और 100 यज्ञों का इंतजाम करो। रामचरित बाबू जाओ यज्ञ का इंतजाम करो, एक का नहीं 100 करना है एक साथ में, लगातार एक के बाद एक। इस तरह से 100 यज्ञ आरंभ हो गए, 1 after another, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, सब सफल, कोई विघ्न नहीं, बाधा नहीं, कुछ नहीं, 99 पूरे हो गए भाई साहब, 99 कंप्लीट हो गए। अभी क्या बाकी है, 1 रन बाकी है, 1 रन सेंचुरी मारने के लिए, और 10 ओवर हो गए अभी भी सेंचुरी नहीं हो रही है, एक टुकड़ों को खेल रहा है। ऐसा नहीं है, वो 99 पूरे हो गए तो सब देवता भयभीत हो गए, बाप रे अभी 99 पूरे हो गए, अभी 100 पूरा हो गया ना तो क्या होगा, गया हमारा सब कुछ खत्म हो गया। उस टाइम वो भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भाग भाग के उनको विष्णु के पास लेके गए, बोले महाराज इसका यज्ञ पूरा हो गया, हम गए काम से, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अभी भिखारी बन के रहना पड़ेगा, इसके घर में जाकर पानी भरना पड़ेगा। ऐसा हुआ है पहले, जब हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके सब वरदान प्राप्त किया था ना, तो इंद्र को पानी भरने के लिए घर पे रखा था उसने, लादी पोछने के लिए रखा था देवताओं को, बोलो साफ सफाई करने के लिए रखा था, नौकर के रूप में, ये पानी लेके आओ, ये लेके आओ, ये खाना लेके आओ, ये सपड़ा मार दो, ऐसा काम देवता लोग कर रहे दर्द के मारे। और हिरण्यकश्यपु ने नज़र उठाया ना तो लगे ऐसे ऐसे कांपते थे डर के मारे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हल देखने का बस। आप डर रहे हो क्या अभी डॉक्टर साहब? नहीं ना। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु देखता था तो सब लोग कांपते थे। ऐसे ही बलि महाराज करेगा हमको, डर के मारे सब लोग विष्णु के पास गए, और विष्णु भगवान ने कहा डोंट वरी माँ भैष्ट, मैं आऊँगा अदिति के पुत्र के रूप में आऊँगा, और तुम देवताओं का उद्धार करूंगा जो मेरे भक्त हो आप लोग। तब जन्म हुआ वामन देव का, और किस दिन जन्म हुआ, कल के दिन महाद्वादशी, हाँ, भाद्रपद महीने की शुद्ध पक्ष की द्वादशी के दिन वामन देव का जन्म हुआ। स्वर्ण कांति मतलब गोल्डन कलर उनका था, जनी था शरीर के ऊपर, ना तेज था बालक के अंदर। उसको देख के स्वयं माता पिता ने प्रणाम किया उनको, इतना दिव्य बालक हमारा पुत्र बनकर आया है। भगवान ने भी याद दिलाया कि मैं वही विष्णु हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया, तुम्हारी कोख धन्य करने के लिए आया हूँ मैं। और उसके पहले अदिति माता को एक व्रत दिया गया, व्रत उसको प्राप्त करने के लिए पुत्र के रूप में। देखो कोई भी चीज़ है ना, बड़ी चीज़ सस्ती नहीं होती है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपको नकली चाहिए आपको बैंगल और चाहिए बहुत सस्ता मिलेगा, प्योर गोल्ड का चाहिए बहुत पैसा देना पड़ेगा, है ना। वो बेंटेक्स का इसका उसका कितना गर्दी रही दुकान के अंदर, इतना चमकता हुआ होता है वो, लेकिन सोना नहीं होता वो, उधर बहुत ग्राहक होते हैं, लेकिन असली सोने के दुकान में बहुत कम ग्राहक होते हैं, इसके बाद उतना दाम होता है, वो दाम चुका सकते हो तो फिर उनको असली सोने का गहना मिलता है। उस तरह से सबको बच्चे होते हैं, सबको। आप कितने में, आप में से कितने के बच्चे हैं इसमें, बता हाथ रो, कितने लोग के बच्चे हो गए, सबको हो गए। किसी का बच्चा भगवान है क्या इसके अंदर, बताओ? नहीं ना। हमें भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भगवान नहीं है, लेकिन अदिति को भगवान के भगवान मिलने वाले थे, बच्चे बन के भगवान उनका बच्चा बन के आने वाले थे। तो उनको बताया कि आपको ये व्रत करना पड़ेगा, उसका नाम है पयोव्रत। और अदिति माता ने, वो उसका तो पूरा लंबा वर्णन है, आपको समझ में नहीं आएगा वो उसका मतलब क्या है, लेकिन भागवत में इसका वर्णन आया है कि अदिति माता ने भगवान के पुत्र प्राप्त करने के लिए, भगवान की माता बनने के लिए व्रत किया। बहुत कठोर व्रत था वो, तो वो कठोर व्रत होने के बाद में उनको भगवान का पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। अरे ऐसी माता होना चाहिए, है ना, जो भगवान को जन्म देने के योग्य हो, भगवान की माता बने वो, यशोदा माता, देवकी माता, कौशल्या माता, है ना, से महान माता हमारे इतिहास में हुई है। उसमें से एक माता अदिति है जिसके गर्भ में वामन भगवान ने जन्म लिया। उसका एक और नाम है उपेंद्र, क्यों, क्यों इंद्र का छोटा भाई था वो, इसलिए उपेंद्र, उप इंद्र। एक नाम है बटू, यानी कि छोटे से कद के थे, छोटे से थे, लेकिन छोटा हो या नन्ना गोद में हो या बड़ा हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं, है कि नहीं। 7 साल के बालक ने पर्वत उठाया कि नहीं, 7 ईयर ओल्ड 7 दिन 7 रात को उठाया, ऐसे दिन रात, ऐसा नहीं मम्मी हाथ दुख रहा है थोड़ा मालिश करो, बहुत देर हो गया, 1 घंटा हो गया, चेंज करूँ क्या ये हाथ से, ये हाथ में करूँ क्या, ऐसा नहीं, आराम से खड़े, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। तो वो भगवान एकदम राइट टाइम पे जन्म लिया उन्होंने, और कुछ दिन के बाद में तुरंत पहुँच गए। 100वां यज्ञ चल रहा है, ध्यान से सुनो, 100वां यज्ञ चल रहा है और अभी उसका पूर्ति होने वाला है। और यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है बताओ, आप जानते हैं, आप किसको बताए, यज्ञ की पूर्ति में क्या होता है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण लोग आते हैं, बैठते हैं ना, उनको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नारियल देते हैं, बैठाते हैं, और यज्ञ के एंड में सब लोग को दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा में जमीन देते हैं, सोना देते हैं, गाय देते हैं, क्या क्या देते हैं। तो ये यज्ञ के एंड में, अभी यज्ञ पूरा होने ही वाला है, अभी वो इंद्र बनने ही वाले हैं, अभी तो मंजिल बहुत दूर नहीं है, उस लाइन में उधर खड़े रहने के लिए वामन देव आ जाते हैं। और जैसे ही उधर तो हजारों ब्राह्मण बैठे हुए हैं दक्षिणा मांगने के लिए, देने के लिए पहुंच गए उधर प्रसाद खाने के लिए। जब ये आए तो इतना तेज उनका, इतना सौंदर्य, इतना ब्यूटी, इतना प्रकाश, वो देख के बलि को एकदम आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे कौन बालक है ये, खड़ा हो गया वो तुरंत, अपने आप ही खड़े हो गए स्प्रिंग जैसा। और देखते लगे अरे बाप रे इतना महान ब्राह्मण है ये, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, सब में से इसको प्रणाम किया, हाथ में छतरी छोटी सी, मृगाजिन मतलब क्या वो होता ना, हिरण की चमड़ी वो साधु लोग पहनते हैं, वो मृगाजिन गोल्डन मतलब यहाँ पर जनी होता है ना, ब्राह्मण थ्रेड, और हाथ में कमंडल और जप की माला, सुंदर भेष करके, सुनहरी रंग के बाल, सुनहरा चेहरा, ना प्रकाश और तेज लेकर वो प्रकट हो गए। तो सबको दक्षिणा दिया। तो जब ही इनका नंबर आया तो उनको पूछा, महाराज आप तो इतने तेजस्वी हो, लगता है कि आप स्वयं भगवान ही हो, इतना तेज है आपके अंदर। मेरा भाग्य है कि आप मेरे यज्ञ में दक्षिणा लेने आए हो, मेरा ये भाग्य कि मैं आपको दक्षिणा देने के लिए अभी मैं खड़ा हूँ, ये मेरा जीवन का धन्यता है। बताओ ब्राह्मण देवता क्या दूँ आपको मैं, दक्षिणा में क्या दूँ आपको, तीनों लोग दे दूँ, ब्रह्मा लोग दे दूँ, क्या नया लोग बना के दे दूँ आपको, मांगो आप महाराज मांगो, कितनी लक्ष्य गाय दूँ आपको मैं, कितना जमीन दे दूँ बोलो आप, आप जो चाहे मांगो मैं पूरा करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसा इतना दिव्य ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आया है, मेरे यज्ञ की पूर्णता करने के लिए आया है, आपको दान देने के बाद मुझे इंद्रपद मिलने वाला है, इतना भाग्य का समय है, मांगो ब्राह्मण देवता मांगो। ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं, बोलते हैं मुझे केवल तीन पग भूमि चाहिए यज्ञ करने के लिए, बस तीन पैल उतना मिलेगा जमीन ना, तो अपना यज्ञ पूजा में करते रहूंगा आराम से। तो बलि क्या बोलता है, अरे महाराज मुझे तो लगा था कि आप बड़े बुद्धिमान हो, इतना तेज है आपके चेहरे पर, ये लगा आपको ज्ञान भी होगा, अरे आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं, राजा के पास जाके दो रोटी मांग रहे हो, जिंदगी भर खाने का इंतजाम कर सकता हूं है ना, ऐसा राजा का कैपेसिटी है। आप जानते नहीं हो महाराज, लगता है मुझे आप सब ज्ञान आपको था, लेकिन लगता है आप अज्ञानी हो, आपको इतनी बुद्धि नहीं है जितना होनी चाहिए कि मुझ जैसे व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए और मैं आपको क्या दे सकता हूं उसका आपको अंदाज नहीं है, इसलिए फिर से आप सोचो और मांगो। एक बार सब लोग बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये आपको मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी जो उत्तर दिया है वामन देव ने बलि महाराज को, वो हम सबको उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे जितना जरूरी है उतना ही मुझे लेना चाहिए, नंबर वन। अभी जरूरत क्या है हमारे लिए मालूम है क्या, कितना जरूरत है हमको वो बता सकता है, कहाँ पर लाइन मारे और वहां से एंड करे, इसके आगे नहीं जाए, नोबडी नोज। तो बोलते मैं ब्राह्मण हूं, मुझे यज्ञ करना है, मेरे लिए तीन पग भूमि काफी है और उसमें मैं संतुष्ट हूं, लेकिन आप देखो आपके पास तीनों लोगों का राज्य है फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट नहीं है, आपके पास तीनों लोग का राज्य है फिर भी आप सौ यज्ञ कर रहे हो क्योंकि आपको उसके ऊपर का इंद्रपद भी चाहिए, इतना राज्य प्राप्त करने के बाद भी आपको इंद्र का पद चाहिए, आप संतुष्ट नहीं हो, इसलिए मुझे प्रचार मत करो, मैं संतुष्ट हूं, तीन पग भूमि दे दो, हाँ बोलो खत्म। तो उनको लगा ठीक है, आपको अगर तीन ही पग चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं आपको एक पूरा लोक है ना, लोक ब्रह्मा लोक या ऐसा कोई लोक आपको दे सकता हूं, आपके नाम पे कर दूंगा एग्रीमेंट के साथ विथ रजिस्ट्रेशन फ्री फी। लेकिन वो नहीं बोलते नहीं चाहिए मुझे, तो ठीक है अभी आपको चाहिए वो जो आपको चाहिए देता हूं। चलो उतने में उनके गुरु आए, उसके कान में बताया अरे मूर्ख बलि महाराज तुम जानते नहीं हो ये कौन है, तुमको लगता है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है, वो स्वयं भगवान है, तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है वो, इसको हाँ मत बोलना, अभी इतना सा लगता है तीन पग में तेरा सारा भूमि नाप लेगा वो, जितना लोक है सब समाप्त कर लेगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, भिखारी बनोगे। अब ये भी सही है, गुरु तुमको राइट टाइम पे वॉर्न कर रहा है, गलती मत करना सब खो जाओगे, सब खो बैठोगे, इतना सब मेहनत किया है, इतना युद्ध किया, सबको राज्य छीन लिया, सौ यज्ञ का इंतजाम किया, इतना टाइम लगा उसके लिए, इतना यज्ञ संपन्न किया, अभी लास्ट मोमेंट आ गया है, वो 14 भुवन के साथ में तुम इंद्रपद भी प्राप्त करोगे, अभी गलती मत करना, सारा मेहनत पानी में जाएगा। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान से सुन लो, एक एक चीज भागवत में दी है ना, इतना महत्वपूर्ण दी है, इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे विचार लायक है वो। एक क्या बताया, जितना जरूरी है उतने में संतुष्ट होना चाहिए, जितना मिल रहा है उसमें ही संतुष्टि माननी चाहिए, लेकिन है क्या आपको संतुष्टि, हाँ जिसको 10,000 पगार है वो सोचता है 12 हो गया तो कितना अच्छा रहेगा, जिसके पास दो पहिए व्हील की स्कूटर है तो चार पहिए की नैनो भी चलेगी लेकिन चार पहिया चाहिए, इसके बाद चार पहिए का नैनो आ गया बोलता है कि अभी वो अल्टो चाहिए, तो अल्टो आ गया तो बोलेगा कि अभी i10 चाहिए, फिर i20 चाहिए, i30, i40, i50, i60, एंड ही नहीं उसका कुछ। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए मतलब कितने करोड़, लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो भी मेहनत करते हैं और चाहिए उनको, मतलब क्या है ना, पेट भरता ही नहीं सर, क्या करें, कितना भी करो पेट भरता ही नहीं, पेट का साइज बढ़ते जाता है। ये पहला अपना अपने लेसन है। एनीवेज, तो जब भी बलि महाराज ने क्या सोचा, बलि महाराज सोचते हैं कि हमारे गुरु बोल रहे हैं कि ये भगवान है, अरे कितना भाग्य है मेरा, कितना भाग्य है मेरा, मेरे दरवाजे भगवान भिक्षा मांगने आए, ब्राह्मण बनकर भिक्षुक बनकर आए, ये मेरे कितना बड़ी भाग्य की बात है मेरे लिए, ये जीवन का अल्टीमेट मौका है मेरे लिए। हम सब लोग उनके दरवाजे पे जाके भीख मांगते हैं, महाराज अच्छी पत्नी दो, महाराज नौकरी में प्रमोशन दे दो, है ना, महाराज अच्छा पति दे दो, लड़की लोग महाराज अच्छी पत्नी दे दो, लड़के लोग ये चाहिए वो चाहिए, जमीन चाहिए, ये सैंक्शन होना चाहिए, अभी काम हो जाने दो, अच्छा एक बार फॉरेन की यात्रा होने दो मेरी भगवान, कुछ नए लड़के जवान लड़के मुझे मिलते हैं, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना। बोला क्या प्रार्थना करूँ, मुझे अमेरिका जाने को मिलेगा सब, प्रार्थना करना, मुझे वहाँ जाके पढ़ना है और वहाँ का बीटेक डिग्री प्राप्त करना है। मुझे इतना आश्चर्य हो गया, ये भी कोई आशीर्वाद है, तथास्तु अमेरिका गमनस्तु। ये कोई आशीर्वाद है क्या, भगवान की भक्ति मांगो, हाँ आत्मा की शुद्धि मांगो तो कुछ ये कुछ भिक्षा दे सकते हैं, उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि जिनके दरवाजे पे दुनिया जाके भिक्षा मांगती है वो मेरे दरवाजे पे आके भिक्षा मांग रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और वैसे भी वो चाहे भिक्षा बन भिक्षुक बन के मांगने को आ जाए या तो ऐसे ही मांगने को आ जाए, मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, यही मेरी बड़ी भाग्यता है, भाग्य चीज है। और जीवन में सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी वैष्णव था, वो भगवान का भक्त था, और वो मांग रहे हैं तो जो भी मांगे वो देना मेरा भाग्य है और देना ही चाहिए। बोलते ना ये मौका ना आएगा दोबारा, ये वंस इन लाइफ टाइम मौका है मेरे लिए। तो उसने अपने गुरु का आज्ञा भी तोड़ दिया। शास्त्र में लिखा है ऐसा एक ही उदाहरण है, गुरु का आज्ञा तोड़ दिया, वो भी अच्छे काम के लिए तोड़ा। ऐसा नहीं कि गुरु उसको भगवान के सामने दान देने के लिए मना कर रहा है, इसलिए उसका उनकी आज्ञा तोड़ना भी सही था। ऐसे एक ही स्थान पे हम भगवान गुरु जी की आज्ञा तोड़ सकते हैं, जैसे अगर गुरु तुमको बोलेगा भगवान की सेवा मत करो, इसकी सेवा करो या मेरी सेवा करो, तो फिर उसको आज्ञा तोड़ना चाहिए। तो ये जानकर, जान लिया गुरु से कि ये भगवान है, और सेकंड आज्ञा भी मिला कि मत सेवा करो इसकी, उसको जमीन मत दो, तो भगवान का नॉलेज लिया कि ये भगवान है, आगे का नहीं लिया। और वो इतना वो पानी देते ना पानी, तथास्तु को मंत्र बोलते हैं और अर्पण करते जमीन का, तो जमीन अर्पण कर लिया। तो बटु वामन बोलते हैं अभी नाप लूँ, अभी नाप लूँ क्या, बोला नापो, जैसे हाँ बोला, हे बावन बटु इतने से थे, इतने बड़े हो गए, बड़े 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 हो गए, आकाश तक पहुँच गए वो, ऐसा बलि देखता रहेगा ऊपर ऊपर करके, उसका मुकुट भी गिर गया, ऐसे देखेगा तुझे गिरेगा ना मुकुट, गिर गया मुकुट, लेकिन वो बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, इतने बड़े हो गए कि पूरा 14 भुवन ऐसे ही साइज का उनका हो गया। अब बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं, अब नापो क्या, पहले तो इतने थे हाँ बोल दिया, अभी नापो क्या, हाँ अभी क्या है, वर्ड दे दिया ना, वचन दे दिया एक बार। तो एक पैर पे पाताल और पृथ्वी नाप लिया, एक ही पैर पे, कितना बड़ा पैर होगा उनका सोच सकते हैं, अरे हमने अभी सोचा कि यहाँ पर एक पैर नाप लो तो यहाँ से इधर जाएगा 2 फुट। भगवान ने एक पैर डाला तो पाताल लोक 6, अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल, 6 लोक एक पग में प्राप्त कर लिया। फिर बोला सेकंड ले लूँगा, सेकंड तो सेकंड लिया तो पूरा 6 स्वर्ग लोक प्राप्त। अभी क्या बचा, जितना उसका प्रॉपर्टी था 2 पैर में नाप लिया, अभी तीसरा पैर कहाँ से, तूने प्रॉमिस किया मुझे तीसरा पैर कहाँ रखो, तो सोच लिया उन्होंने, अभी तो गड़बड़ हो गया ना पूरा, अभी जो मेरा था वो सब ले लिया उन्होंने 2 पैर में, अभी तीसरा पैर देने के लिए मेरे पास क्या बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो सोचते हैं क्या देना चाहिए, तो बोलते मेरे सर पे पांव रखो, मतलब क्या मेरा अहम जो है ना वो ले लो, अभी आपके सर पे पांव रखूंगा तो मतलब क्या होता है, आपका अपमान हो गया ना, वो आपके सर पे पांव रखा मतलब, एक तो आशीर्वाद है लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका अपमान हो गया ना, वो मनोज अपमान हो गया। अहम के ऊपर पाँव रखने को बोला उन्होंने, और वैसे ही भगवान ने तुरंत उसके सर पे पाँव रखा, और सर पे पाँव रख के उसको पाताल लोक में भेज दिया, मतलब एक लोक है सुतल लोक करके भेज दिया उसको। वहाँ तक आपने बचपन में कहानी सुनी है, इसके आगे की कहानी आपने सुनी होगी नहीं, उसके आगे क्या हुआ। यहाँ पर हमारे स्कूल के किताब की कहानी समाप्त होती है कि भगवान ने वामन देव का गर्व हरण किया, उसके सर पे पाँव रखा और उसको नीचे भेज दिया, और देवताओं को अपना राज्य वापस मिला। भाग भाग के अपने अपने सिंहासन पर बैठे सब लोग, अपना अपना पोजीशन पे बैठ गए, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, संकट से मुक्त कर दिया। लेकिन उस समय जब भगवान उसके चरण पे सर पे पैर रखने वाले थे, प्रहलाद जी आ गए, भगवान के धाम से आ गए। वो कौन थे? वो इसके थे बाबा, यानी ग्रैंडफादर थे उसके। वो भगवान को मिलने के लिए आए, वो देख रहे भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, वो सर पे पाँव रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसका अपमान करके नरक में भेज रहे हैं उसको, लेकिन प्रहलाद जानते थे कि भगवान के चरण का स्पर्श होने का मतलब क्या होता है, तो देखने के लिए आए वो। उसके बाद की कहानी सब लोग ध्यान से सुनना। भगवान ने बलि को वरदान दिया, बोला मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बदले में तुमको मैं ऐसा एक राज्य दूंगा, सुतल लोक दूंगा मैं तुमको, जो अभी की तारीख में नरक भी गिना जाता है, लेकिन सुतल लोक में इतना बढ़िया बना दूंगा कि इंद्र से बढ़कर बनेगा वो, इंद्र का राज्य जो है ना उससे बढ़कर बनेगा वो। इंद्र को ईर्ष्या होगी आपकी तरफ से, इतना बड़ा बढ़िया राज्य दिया आपको, तो इंद्र ही आक्रमण करेगा आपके ऊपर, ईर्ष्या मतलब द्वेष के कारण। तो मैं इंद्र से बचने के लिए मेरा चक्र भी दूंगा आपको, और वो चक्र जो है आपके सुतल लोक की रक्षा करेगा। फिर आप राक्षस वंश के हो, आप हजारों साल राज्य करोगे राक्षस लोक के बीच में, लेकिन राक्षसी मनोवृत्ति आप पर परिणाम नहीं करेगी, आप मेरा भक्त बने रहोगे। और सुनो, जब इतना साल राज्य करोगे और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा तो मेरे वैकुंठ में आप जगह प्राप्त करोगे। और सुनो मेरे प्रिय बलि, मैं स्वयं तुम्हारे लोक में द्वारपाल बनकर आऊंगा, गेट के पर बनके, और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी आप बताओ, भगवान ने उसके सर पे पांव रखा तो वो शाप दिया कि वरदान दिया? हाँ, लगता है बाहर से आपको कि बलि का अपमान करके उसको नीचे भेज दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा वरदान दिया कि इंद्र भी देखते रह गए, अरे बाप रे, हमने तो सोचा था क्या और क्या हुआ। तो ये देखकर प्रहलाद बोले, अरे बाप रे, अगर भगवान मेरे ग्रैंड सन के राज्य में जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ। तो भी सूत्र लोग पहुँच गए, और वहाँ पर भगवान तुरंत गए, चक्र को भेजा, सुतल लोक को इतना पावरफुल बना दिया, इतना ऐश्वर्य संपन्न बना दिया, इतना गहना, इतना संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, इतना आनंद, इतना भोग, खाने पीने की वस्तु, ऐसा आनंद कि इंद्र के लोक में भी नहीं, बोलो। और लास्ट में भगवान चले गए गेट कीपर बनने के लिए। और कैसे गेट के बने? उसके दरबार में कई गेट थे, कभी ये गेट से आ रहा है, कभी वो गेट से आ रहा है, गेट नंबर 1 से आ रहा है, कभी 2 से आ रहा है, कभी 3 से आ रहा है। हमारे सिस्टम में ना 3 गेट है, 1, 2, 3, तो बोलना पड़ता है 3 के पास में आ जाओ, 3 के पास में हमारा बिल्डिंग है। तो आदमी ढूंढ ढूंढ के आता है, नंबर 1 किधर है, नंबर 2 किधर है, अच्छा नंबर 3 किधर है, हाँ 3 से अंदर जाएंगे तो सेकंड बिल्डिंग हमारा बिल्डिंग है। लेकिन तीनों में से किसी भी गेट में आ सकता है सेक्टर में हमारे। वैसे बलि के दरबार में कई गेट थे, तो जब मर्जी अलग अलग गेट से आता था, तो ये भागते थे, अरे महाराज कहाँ से आ रहे हैं आज, बोला गेट नंबर 10 से आ रहे हैं, तो 10 पे भाग रहा है, उधर खड़े हो रहे हैं। इतना मेहनत भगवान ने किया अपने भक्त का रक्षा करने के लिए और द्वारपाल बनने के लिए, बोलो आप समझो कितना प्रेम भगवान करते हैं भक्त के ऊपर। अपने डोर कीपर बन जाते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। अच्छा, अभी भगवान तो अवतार लेने चले गए वैकुंठ से, विष्णु जी चले गए, लक्ष्मी जी वहाँ पर थी वैकुंठ में, वो वेट कर रही है, अरे काम तो हो गया भगवान का, आए नहीं लौट के है ना, काम तो हो गया ना, अभी बलि का गर्भ हरण करना था, देवताओं को बचाना था, देवताओं को राज्य वापस देना, सब कुछ काम तो हो गया, पर गए किधर, घर पे लौट के नहीं आए। तो लक्ष्मी देवी ढूंढ ढूंढ के पृथ्वी पर आई, बोला हमारे पति किधर है? बोले महाराज, वो मतलब महारानी जी, वो तो सुतल लोक गए हैं, उधर वो बलि के सुतल लोक में द्वारपाल का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सुतल लोक में चली गई वो, और देख रहे हैं बेचारी कि मेरे पति भाग रहे, कभी गेट नंबर 9, कभी गेट नंबर 11, कभी गेट नंबर 1012, कभी गेट नंबर 50, भाग रहे यहाँ से वहाँ, जहाँ से बलि आएगा वहाँ से भाग रहे हैं। तो फिर बलि के दरबार भी गई हो तो बलि बहुत खुश हो गए, अरे भगवान भी आए, भगवान की पत्नी भी आई, क्या बात है। बोले माता क्या सेवा करूं आपकी। तो लक्ष्मी देवी, साक्षात लक्ष्मी देवी बलि महाराज से विनती करती है, आप केवल रोज एक ही फिक्स गेट से आया करो ताकि मेरे पति एक ही गेट पे खड़े रहे और भागना नहीं पड़े उनको। बोलो, सोच सकते हैं आप, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त के ऊपर। भगवान नहीं करते, भगवान की पत्नी भी करती। अपने भगवान पति का दशा देखकर वो वरदान मांग रही है बलि से, भक्त से वरदान मांग रही है कि मेरे भगवान को ज़्यादा मत दौड़ाओ, एक ही गेट के पास खड़ा करो। ये आपने सुना था क्या पहले कभी? इतना सुंदर कहानी है, इसको सुनकर ना हमारे दिल में बहुत क्या है ना, आशा उत्पन्न होती है, होप कि भगवान कितने दयालु है, अरे हम पर भी दया करेंगे। वो राक्षस कुल में जन्म होने पर प्रहलाद पर कृपा किया, विरोचन पे कृपा किया, बलि पे कृपा किया, हाँ सब पे कृपा किया उन्होंने। आगे उसका पुत्र का नाम है बाणासुर, वो भी राक्षस बना, बहुत बेकार बना वो आदमी, खुद ने वरदान खुद नहीं मारा उसको। वरदान भगवान याद रखते हैं, मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा, सबका उद्धार किया उन्होंने। एक भक्त होने के नाते भगवान भक्त का दास बनते हैं, हम भगवान का दास बनना चाहते हैं और भगवान भक्त का दास बनना चाहते हैं, सोचो आप इस बात पर। तो इस तरह से ये सुंदर लीला भगवान वामन ने संपन्न किया। जन्म कभी हुआ उनका? टुमारो, वामन द्वादश पे उनका बर्थडे है। तो हम लोग इस लीला को सुनते हैं और याद करते हैं कितने दयालु भगवान हैं, और भगवान की कथा सुनने पर हमारे भाग्य का वो उदय होता है। भगवान की कथा सुनने पर हमारे हृदय का जो दोष है ना, पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम बढ़ता है। हमारे जीवन में कष्ट होगा तो भूल जाते हैं हम। अभी आपके सबके जीवन में कष्ट होगा, लेकिन जितना समय कथा सुन रहे थे कुछ कष्ट की याद आई क्या आपको? ऐसी भगवान की कथा का पावर है। गोपियाँ कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, क्या बोलते हैं ये जीवन ना, तप्त जीवन है मतलब जलने वाला है, सबको जला देता है जीवन, सबको तकलीफ होती है जीवन में। हाँ कितना कष्ट है इसमें, क्या गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, आंधी है, सब प्रकार का कष्ट है। इधर कोई फ्री नहीं है, इधर देवता भी फ्री नहीं है, आम लोग भी फ्री नहीं है, जानवर भी फ्री नहीं है, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब मेरी मतलब भगवान की कथा, तव मतलब आपकी जब कथा लोग सुनते हैं तो तपते हुए जीवन से ठंडक प्राप्त करते हैं, शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। कवि भी रीडितम कल्मशापहम, कल्मश का मतलब क्या है? दुख, कष्ट, दोष, पीड़ा। कल्मशापहम, नष्ट हो जाता है सब कुछ। और ये जो कथा सुनाते हैं और सुनते हैं वो बड़े भाग्यवान है बोलते गोपियां, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से सारे ताप मिट जाते हैं। अब भगवान की लीला भगवान से अलग नहीं है, भगवान और उनकी लीला सेम है। जब उनकी आप कथा सुनते हो साक्षात भगवान का संग कर रहे हो आप, चाहे भक्ति वृंदावन के पांचवें माले पे बैठे हो, हाँ चाहे दुबले हो, पतले हो, छोटे हो, बड़े हो, नर्स हो, आदमी हो, औरत हो, सब लोग भगवान का संग कर रहे हैं जब भगवान की कथा सुन रहे हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान के महान संत प्रकट होते हैं, नारद मुनि जी, हाँ बड़े बड़े संत भगवान के प्रकट हो जाते हैं, उनके संग में आप बैठे हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सब भगवान के, सभी युगों के संत महात्मा भगवान की कथा में आके बैठते हैं। तो सच्चे दिल से हम कथा सुनते हैं और सच्चे दिल से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कथा सुनने का दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा, बहुत हाँ हमारा उंजड़ भर जाएगा, और भी कथा करेंगे और पैसा मिलेगा, ये भावना से नहीं, निरपेक्ष भावना से, प्रेम से कथा करेंगे तो दोनों व्यक्तियों को भगवान के संग का अनुभव होता है, दोनों व्यक्ति का जीवन का कल्याण हो जाता है। जिस व्यक्ति को भगवान का संग प्राप्त होता है उनके नाम के माध्यम से या कथा के माध्यम से, बड़े भाग्यवान जीव है। कितने लोग दुनिया में कथा सुनते बताओ, सब दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, वेश्या में जाते हैं, क्या क्या चीटिंग करते हैं, है ना, मांस खाते हैं, हत्या करते हैं, किसी को गर्भपात करते हैं, कितना कितना पाप करते लोग, कहाँ आते हैं भगवान के सुनने के लिए। अरे बहुत दुर्लभ चीज़ है ये, मनुष्य के जीवन में दुर्लभ मानव जन्म सत्संग करो हे ए भव सिंदुरे, इस दुर्लभ मानव जीवन में एक दुर्लभ चीज़ है, वो है संतों का संग जिसमें हम भगवान की कथा सुनते हैं। बहुत दुर्लभ है ये, बहुत ही दुर्लभ। चाहे नौकरी के रूप में आप आके यहाँ सुन रहे हो तो आपके बड़े भाग्य की बात है, ये आपका भाग्य है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो कौन से अस्पताल में सुना है आपने? हिंदुजा हॉस्पिटल में दोपहर को 3 बजे सब लोग बैठे हुए हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, यात्रा जा रही है, सुना है क्या आपने? कभी कभी होता नहीं ऐसा। ये भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा है, इसलिए हम आपको विनती करते हैं आप जप करो भगवान के नाम का। भगवान का नाम का जप जो है ना वो आपको भगवान तक पहुंचाएगा। संकोच मत करो, आलस्य मत करो, अरे कल करेंगे, बाद में करेंगे, हाँ पढ़ाई होने के बाद करेंगे, बच्चा होने के बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे, फिर ज़िंदगी बाद कैसे करेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर कैसे करेंगे, अभी करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। और हमारे अस्पताल में समय समय पर उत्सव के अनुसार हम कथा बताते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है, उसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन में क्या उसका कनेक्शन है, उसको हमको क्या सीखना है। ये सब हमारा भाग्य है कि हमको मालूम पड़ रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है, दूसरों को बताना चाहिए, अपने पास रखना नहीं चाहिए। ये भगवान का धन है, आपको मिला है, बांटो आपको। और जब मैं बांटता हूँ मेरा धन बढ़ता है, कम नहीं होता है। जब मैं कथा कहता हूँ मुझे कथा याद होती है, दोबारा कभी भूलने जाऊँगा मैं उसको, 100 बार कहूँगा तो और मजबूत हो जाएगी मेरी याद। तो मैं आपको बता के कुछ खो रहा हूँ क्या? नहीं, आपको कथा बता के और आप सुन के दोनों अलग भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कल के दिन सब लोग आइए, भगवान के मंदिर में जाइए। कल हमारे मंदिर में ब्रह्मोत्सव है, बहुत सुंदर। कल के दिन ही भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठापना हुई थी, गिरिधारी मंदिर में भगवान की स्थापना हुई थी, प्रतिष्ठापना कल का ही दिन था वो। तो भगवान का 11 बजे अभिषेक होगा, शाम को वो उत्सव होंगे, दिन भर कीर्तन चल रहा है, उसका लाभ लीजिए। वहाँ कुत्तों बिल्लियों को आमंत्रण नहीं है भाई साहब, कुत्ते के लिए अलग है, पंछियों के लिए अलग आक्रमण आमंत्रण नहीं दिया है, आमंत्रण केवल मनुष्यों को दिया गया है। आप आइए, उसका लाभ लीजिए, यही जीवन की धन्यता है। और जीवन में कुछ धन्यता नहीं है, पैसा आएगा पैसा जाएगा, जवानी होगी ख़त्म हो जाएगी एक दिन, हाँ बाल बच्चे बड़े होकर तुमको छोड़ के चले जाएंगे, और सबसे आखिर में ज़िंदगी तुमको छोड़ के जाएगी। जिस ज़िंदगी पर इतना नाज किया आपने वो ज़िंदगी भी आपको छोड़ के चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। वो ज़िंदगी है, भगवान को याद करो, अपने जीवन को धन्य करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।